चर्चा का विषय है।
ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है व्यवसाय सुगमता बढ़ाने की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोई भट्टाचार्य जी और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
कहते हैं हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। भारत के किसी छोटे शहर में एक युवा अपने सपनों के साथ खड़ा है। उसके मन में एक सवाल है, क्या मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ? कुछ साल पहले तक इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं था। कई दफ्तर, ढेरों फाइलें, कई मंजूरियां और लंबा इंतजार। लेकिन आज भारत बदल रहा है। अब वही युवा अपने लैपटॉप पर बैठकर कुछ ही क्लिक में कंपनी पंजीकरण कर सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैक्स पंजीकरण, ऑनलाइन मंजूरियां और सेकेंड्स में डिजिटल भुगतान, ये सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं है, ये भारत के आर्थिक परिदृश्य का नया अध्याय है, जहां डिजिटल तकनीक व्यवसाय को तेज, सरल और पारदर्शी बना रही है। आज भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यवसाय पंजीकरण, सरकारी मंजूरियां, कर भुगतान, लॉजिस्टिक्स और बाजार तक पहुंच, सब कुछ पहले से कहीं अधिक आसान हो चुका है। ये कहानी है उस डिजिटल भारत की, जो उद्यमियों को नए अवसर दे रहा है, जो व्यापार को नई गति दे रहा है और जो भारत को दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में और मजबूत बना रहा है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में, आज का विषय है डिजिटल भारत, आसान हुआ व्यापार। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो आर्थिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, शुभमोय भट्टाचार्य जी और एसपी शर्मा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया।
सबसे पहले शुभमोय सर, आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि MCA21 अब अपने तीसरे संस्करण में है, जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित हो रहा है। ई स्क्रूटनी और ई एडजुडिकेशन जैसी सुविधाएं कॉरपोरेट गवर्नेंस में पारदर्शिता और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने में आपके हिसाब से कितने निर्णायक साबित हो रही हैं?
MCA21 जब शुरुआत हुआ था तो इस पर लोगों को ज्यादा उत्सुकता नहीं था या उस बारे में समझ नहीं था, और उसका वजह यह था कि इंडिया में स्टार्टअप्स का जिसका आप बात कर रहे हैं, उनकी जो क्रम है या उनका जो लगातार बढ़ते हुए कदम है, उस पर हम लोग उस वक्त सोचे भी नहीं थे। अभी जैसे MCA21 एक अहम बिंदु बन गया है देश में, किसी भी कंपनी का, खासकर छोटे उद्यमों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल चीज का, क्योंकि हम जब कंपनियों की बात करते हैं तो एक बड़ी चीज रहती है कंपनियों की फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। हर तरह के रिटर्न्स होते हैं, कंपनियों को फाइल करना होता है, और जैसे जैसे कंपनियों की कामकाज बढ़ते जाते हैं, उन सारी चीजों में उनको वो रिटर्न्स फाइल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इनमें जो परिश्रम लगता है वो सब छोटे कंपनियों के लिए, मझले कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो कागजी कार्रवाई इस पर निर्भर करना पड़ता था, और ये काफी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और कई सारे लोगों के साथ में लेकर चलना पड़ेगा। वो चीज अभी हम कह रहे हैं पूरा ऑनलाइन हो गया है, यहां तक कि ये ऑनलाइन इतना ज्यादा हो गया है कि अभी MCA21 का अगर सिस्टम अगर ना चले तो कंपनियों को, जिसे कहते हैं, बहुत लाचारी हो जाएगी कि भाई MCA21 क्यों नहीं चला, वो इतना आदी हो चुके हैं। और ये इतना सिग्निफिकेंट है, जैसे हमने 90s में एक देखा था स्टॉक एक्सचेंज का डीमेटेरियलाइजेशन, उसी तरह से कंपनियों का डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ रिटर्न्स एक नया आयाम प्रस्तुत कर दिया है, जिस पर कंपनियों को अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है कि हम फाइलिंग कैसे करेंगे। फाइलिंग के लिए MCA21 यूज करना है और वो उसके जरिए ही चलना है, और उसमें जो जो तब्दीलें आएंगी, जो जो चेंजेस आएंगे, वो इतने, जैसे कहते हैं, डेमोक्रेटिक हो चुका है कि जिस वजह से देश के किसी भी कोने में बैठकर रीजनल ऑफिस वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही फॉर्म्स फिलअप करके उसमें डाल सकते हैं। तो ये तो वही लोग समझते हैं जिनके लिए ये डेली जरूरत है। तो इसलिए MCA21, जिसमें कहूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसे कहते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया है।
सतप्रकाश शर्मा जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की कई कोशिशें की हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे MCA 21 की, इसके साथ स्पाइस प्लस है, उद्यम पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म हैं। आपको क्या लगता है कि व्यावसायिक पंजीकरण की प्रक्रिया पिछले एक दशक में कितनी सरल हुई है और इससे व्यापार को बढ़ने में कितना फायदा आप देख रहे हैं?
देखिए, इससे बहुत सरलता आई है। मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज हम जिसको बोलते हैं वो हमें देखने को मिला है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो सरकार ने शुरू किया, उसके थ्रू 8,29,750 अप्रूवल्स दिए जा चुके हैं, जो कि 32 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के द्वारा और 32 स्टेट्स के द्वारा ये जो अप्रूवल्स हैं दिए गए हैं। और जैसे हम MCA 21 की बात कर रहे थे, तो इसने भी लगभग कोई 3.84 करोड़ फाइलिंग्स जो है पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड की है। लगभग कोई 4.25 करोड़ की जो फाइलिंग्स हैं वो रिकॉर्ड की गई MCA 21 के द्वारा। और फिर जो हमारा उद्यम पोर्टल है, उद्यम पोर्टल ने लगभग 7,71,000 रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट किया है, जो कि लगभग कोई 34 करोड़ जॉब्स को सपोर्ट करता है। ये 12 फरवरी तक का आंकड़ा है। और जो हमारा GSTN प्लेटफॉर्म है, इसमें जनवरी 2026 तक लगभग कोई 102 लाख करोड़ प्रोसेस किए गए हैं इसके द्वारा, जो GSTN प्रोसेसेस हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उसने भी 4 लाख से ज्यादा ऑर्डर वैल्यूज आई है उनके पास। और यूपीआई का तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी जो ब्रेक थ्रू, मैं उसको कहूंगा कि यूपीआई ने एक नए भारत की दिशा को सुदृढ़ किया है, जिसने लगभग कोई 22.5 अरब ट्रांजेक्शन जो है, जिसमें के 28.33 लाख करोड़ जिसकी वैल्यू बनती है, जनवरी 2026 तक जो ट्रांजेक्शन जो है वो हैंडल किए हैं। तो कुल मिला के जो इंडिया का एक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटली जो एक लैंडस्केप एक्सपेंड हुआ है, उसको जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसने एक बहुत तेज गति दी है। और इंडिया की हमारी एक सस्टेन्ड जो कमिटमेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जो गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा रिफॉर्म्स परकुलेट किए, इतने ज्यादा रिफॉर्म्स के ऊपर विचार किया, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसीज को इंक्रीज किया। मैं ये कहूंगा कि फ्रॉम सीमलेस बिजनेस रजिस्ट्रेशन टू अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के ऊपर जो इंडिया का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो बहुत ही सराहनीय है। और जो डिजिटल इकोसिस्टम ने जो ऑर्गेनाइजेशंस का एक जो बिजनेस लाइफ साइकिल है उसको इंश्योर किया, वो हमारे बिजनेस ट्रैजेक्टरी को और बहुत तेज गति से सपोर्ट कर रहा है। और जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ, जो पॉलिसीज का सिंक्रोनाइजेशन थ्रू द डिजिटल प्रोसेसेस, एक बहुत ही एक सुदृढ़ गति से जो स्टेट्स के ग्रोथ को भी सपोर्ट किया और जो हमारा नेशनल GDP है उसको सपोर्ट किया। तो कुल मिला के हम जो है एक वर्ल्ड क्लास गेटवे हमने तैयार कर लिया है, जो कि पूरे विश्व के लिए, उनके ट्रांजैक्शंस के लिए, उनके डिजिटल सपोर्ट के लिए, मैं कहूंगा कि अच्छा सपोर्ट किया है।
शुमोय जी, अगर BRAP की बात करें, यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत हमने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में क्रांतिकारी सुधार देखे, साथ ही अगर जिला सुधार योजना को भी इसमें जोड़ दें, जिसे DBRAP कहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो जिला सुधार योजना है, आने वाले समय में छोटे कस्बों के स्थानीय व्यवसायों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कैसे जोड़ती हुई नजर आ रही है?
BRAP की बात कर रहे हैं या जो दूसरे सारे जो प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये उस तबके के पास पहुंचते हैं जो बिजनेस को एक, जिसे कहते हैं ना, लास्ट एफर्ट की बेसिस पे देखते थे कि एक तो बिजनेस करना है और बिजनेस के साथ प्रोसेसेस जो है वो उनका भी, जिसे कहते हैं, एकदम प्रेशर लेना है। तो ये दोनों मिलाकर इट वाज अ चैलेंज। इनफैक्ट इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम अगर एक दूसरा चीज देखें जो बिजनेस के हिसाब से हम कभी नहीं देखते, बट इफ वी लुक एट PM स्वनिधि स्कीम, जो स्वनिधि स्कीम में वेंडर्स एंड हॉकर्स को जिस तरीके से फॉर्मल इकोनॉमी के तहत ले लिया गया है और जिसका हमें फल अभी देखने को मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ कि आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाइए किसी भी चीज खरीदने के लिए, तो रास्ते का कोई भी दुकान आपको सामने एक QR कोड पहुंचा देता है, QR कोड दिखा देता है। ये जो पूरा प्रोसेस, ये दिस इज द लास्ट फाइंड और द लास्ट एविडेंस ऑफ इसके पहले कितने सारे प्रोसेसेस किए गए हैं, ताकि वो बिजनेस में उनके लिए एक स्मूथ फैसिलिटी हो जाता है कि दुकानदार वहां पे रास्ते के ऊपर हॉकर है, लेकिन उसको कैश बैलेंस को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। कैश सारे QR कोड के जरिए उनके अकाउंट में है, उनको रिस्क ऑफ बींग मग्ड वगैरह कोई वो सारी चीजें खत्म हो गए हैं। इस तरीके की, जिस तरीके का रेवोल्यूशन हम ला गए हैं, जो हम पहले जो भी शर्मा जी भी बता रहे थे कि UPI के जरिए इन सबको प्लेटफॉर्म बनाकर अभी जिसे कहते हैं नए नए डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर इंडस्ट्री को मैप करना, उनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली जो स्कीम लाया जा रहा है, ये सारे पॉसिबल इसलिए हो पा रहे हैं कि हमने एंड टू एंड कनेक्टिविटी बना दिए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस, इन तीनों का। तो इनके जरिए अभी बिजनेस शुरू करना इज नॉट ए रिस्क एट ऑल, जिसलिए आप देख रहे हैं कि हर जगह पे कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना लाचारी के बदले में एज ए प्रेफर्ड ऑप्शन देख रहे हैं। और ये ही बहुत बड़ा जिसे कहते हैं फंडामेंटल थॉट प्रोसेस में चेंज लाए हैं, जो आपको और भी देखने को मिलेंगे जब ये जितने सारे हमारे जो टैक्स प्रोसेसेस हैं ये सारे जिस टोटली ऑटोमेटेड हो जाते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट टू पीपल का जो इंटरफेस है, एक बहुत बड़ा क्रांति लाएगा। लोगों के लिए क्रेडिट ऑब्टेन करना, सब कुछ चीजों का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये सारी चीजों का जो डेवलपमेंट है, ये पूरा मेड इन इंडिया है। इसका कोई दुनिया में इसका कोई कंपेरेबल मिसाल नहीं है कि किसने इस तरह का सोच के इस तरह का पूरा प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिसमें टोटली लोग रोल्ड इन होते जा रहे हैं। इसका हमें दूसरे देश से यहाँ पे कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता है, या दूसरे देश में इसका कोई कंपेरेबल मॉडल नहीं है। सो दैट इटसेल्फ इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। इस बारी जो 2027 में जो डिजिटल सेंसस होगा, सेंसस की जो डेटा है वो अपने आप में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, बहुत सारा बिजनेस को अपना स्ट्रक्चर करने के लिए कि किस जगह पे किस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, किस तरह का प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। वो डेटा पहले हमें अप्रैल 2011 तक अभी भी कागजी फाइलों में ही जमा हुआ था। वो जब डेटा आएगा तो आप देखेंगे देयर विल बी अ मेजर लीप अप इन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट में लोगों के अवेलेबिलिटी, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में।
एसपी सर, अगर हम बात करें भारत में व्यापार की, तो लॉजिस्टिक्स की लागत हमेशा से एक चुनौती रही है, और इसी के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति की शुरुआत भी की। गति शक्ति के तहत तकरीबन 1700 से अधिक डेटा लेयर्स का उपयोग करके कैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या को सुलझाया जा रहा है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये निवेश के लिए भारत को और अधिक आकर्षक बना रहा है।
लॉजिस्टिक्स जो है एक बहुत ही मेजर पार्ट है, समझ लो कि हमारी बैकबोन है जो हमें सपोर्ट करता है, वो चीजों को हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इससे पहले मैं समझता हूं कि 2020 से पहले लॉजिस्टिक्स को कोई इतनी ज्यादा मान्यता नहीं थी, इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता था, क्योंकि जब 2020 में हमने देखा कि कंटेनर्स की प्रॉब्लम हो गई है, जब कोरोना के टाइम पे जो कंटेनर्स थे स्टक हो गए थे, तो उस टाइम पे जो लॉजिस्टिक्स के ऊपर ही सारा जो आदान प्रदान था, जो भी हम मेडिसिन से लेके जो इसेंशियल्स तक जो ट्रांसपोर्ट हो रहे, तो लॉजिस्टिक्स का ही उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें इसकी जो अहमियत थी उसको पहचाना गया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद सरकार ने इमीडिएटली बाद अक्टूबर 2021 में पीएम गति शक्ति का लॉन्च किया, जो एक नेशनल मास्टर प्लान है, और ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव सिद्ध हुआ। इससे क्या हुआ कि एक तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हम कर पाए, जिसमें हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस हुए, और जिसने लगभग 57 सेंट्रल इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड जो मिनिस्ट्रीज हैं और जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना, जिसने लगभग कोई 1700 डेटा लेयर्स को एनेबल किया, कोऑर्डिनेट किया और फिर प्रोजेक्ट्स को ड्राइव किया, जिससे कि आगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज गति आई। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशनरी स्टेप था गवर्नमेंट का, जिसने पीएम गति शक्ति को बढ़ावा दिया, और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग कोई 27 स्टेट्स ऐसे हैं जो स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के लिए नोटिफाई कर दिए गए हैं, जिसमें 28 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान्स के मॉड्यूल में आगे काम कर रहे हैं और इसका आगे एक्सपेंशन जो है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स तक आगे निर्भर होगा। और इसके अलावा जो सरकार का एक जो 2026 तक का अगर हम इसका आकलन करें तो जिसमें 352 प्रोजेक्ट्स जिनका कोई लागत लगभग कोई 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा बनता है और वो सैंक्शन हुए हैं, आउट ऑफ विच 167 आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन, जो कि 201 प्रोजेक्ट है जिसमें से लगभग कोई 167 जो है इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो कुल मिला के जो हमारा लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है और जो हमारा गतिशक्ति सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ कि पूरे हमारे जो देश की ग्रोथ है उसको गति दे रहा है और जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत बनने का उसको सपोर्ट कर रहा है। नाउ एवरी रोड गोज टू विकसित भारत। मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो भी हमारी नई जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बन रही हैं, हमारे इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स नोड्स बन रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स में ब्रेक थ्रू हो रही है, तो ये सब हमारा जो पॉलिसी है, जो फ्रेमवर्क है, जो हमारा वो सब चीजों को सपोर्ट कर रहा है। तो गतिशक्ति मैं समझता हूँ पूरे विश्व के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसने इतने सारे मिनिस्ट्रीज को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कोऑर्डिनेट करके जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनको गति दी और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को गति दी और हमारे जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको गति दी और हम आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बाकी मेजर इकोनॉमीज, और जिससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हुई है। जो पहले हम 14-15% की बात कर रहे थे जीडीपी का, लगभग 14-15% जो है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो जाता है, वो अब कम होके कुछ अनुमान ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि लगभग कोई 9-10% के ऊपर आ गया है और आने वाले टाइम में और भी सस्टेन्ड वे में ये और इम्प्रूव होगा और जो एक ग्लोबल एवरेज है उसके आसपास आ जाएगा। तो कुल मिला के जो गतिशक्ति सिस्टम है जिसने हमारे जो एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सपोर्ट मिली है तो उसने पूरे भारत की जो ग्रोथ है उसको सुदृढ़ किया है और हमारे लिए बहुत ही एम्प्लॉयमेंट के संसाधन भी पैदा किए।
शुमोई जी, थोड़ी चर्चा एमएसएमई और ट्रेड्स के भविष्य पर भी कर लें। बजट 2026-27 में ट्रेड्स को अनिवार्य करने की बात कही गई है। छोटे उद्योगों के लिए कैश फ्लो की समस्या को हल करने में इनवाइस डिस्काउंटिंग और जेम के एकीकरण पर भी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये पहल कितने बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं?
ट्रेड्स का जो मेंशन बजट में किया गया है उससे ही आपको अंदाजा लग सकता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यूनियन बजट में तभी उसका डिस्कशन आता है कि जब वो उसमें बहुत सिग्निफिकेंस हो, उसकी बहुत पहुंच हो। तो ट्रेड डिस्काउंट्स, जिसको हम कहते हैं कि डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि एक छोटे बिजनेस को कहीं से पेमेंट आना है, उस पेमेंट जो आएगा उसका पेमेंट आने से पहले ही वो जो इनवॉइस या दैट रिसीवेबल नोट है उनको वो मोनेटाइज कर सकते हैं, ताकि जब तक वो पेमेंट आए उसके पहले ही वो उसको बाजार से उसके बेसिस पे पैसा उठा सकते हैं। और ट्रेड्स अपने आप में, जैसे अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि स्टेट की छोटे बिजनेस के साथ जब भी आप बिजनेस करें तो उनको ट्रेड्स का ये सर्टिफिकेट जरूर दें ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। तो डेफिनेटली अपने आप में, और हम लोग काफी दिनों से कह रहे हैं कि ट्रेड्स अपने आप में फैक्टरिंग सर्विस के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा पहल है, साथ में ट्रेड कनेक्टिव प्लेटफॉर्म या जिसके से देश के बिजनेसमैन को बाहर की दुनिया से कनेक्शन मिल सकता है। आप देख रहे हैं कि इसका फायदा हमें इस तरह से मिल रहा है कि ऑलरेडी भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पिछले 2025 काफी उथल पुथल रहने के बावजूद भी एक्सपोर्ट की गति में कमी नहीं आई, और ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, क्योंकि हमारे 40% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स हमारे स्मॉल इंडस्ट्री से होते हैं, और वो इंडस्ट्रीज इसीलिए कर पाए, नए मार्केट्स खोज पाए, क्योंकि उनके पास ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आया है, उनके पास कैपेसिटी आया है कि भाई हम दूसरे मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, हमें गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली ये जो बेनिफिशियल प्रोसेस जो हो रहा है, जिसकी वजह से कॉमर्स मिनिस्टर भी बात कर रहे थे कि दुनिया में फिर से राउंड ऑफ डिस्टर्बेंस, उसमें फिर से एक्सपोर्टर्स को और भी क्या क्या सुविधाएं दिया जाए उसके लिए गवर्नमेंट कदम उठाएंगे, ये जो सर्टिफिकेशन में सारे चीजों में जो सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, ये हमारे देश के लिए सच में बहुत काम आ रहा है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि किसी भी सेक्टर में जितना प्रेशर हो सकता था वो प्रेशर काफी हद तक सॉफ्टन हुआ है इन सारे स्टेप्स की वजह से, कि हम जैसे आईसी, आधार बेस्ड ई साइनिंग, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, इन सारी चीजों से ट्रेड में, बिजनेस में, व्यापार में, विदेशी व्यापार में एफिशिएंसी आया है। और इसीलिए अब देख भी रहे हैं कि डोमेस्टिक ट्रेडर्स जो पहले कैश सब्सिडी की बात कर रहे थे, वो कैश सब्सिडी ज्यादा प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात ज्यादा कर रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया है कि प्रोसेस रिफॉर्म से ही बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है उनको, जो पहले उनको सिर्फ कैश हैंडआउट पे ही भरोसा करना जरूरी हो गया था।
एसपी सर, अगर बात थोड़ी ONDC पर भी करें, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आपको क्या लगता है कि ये छोटे शहर के जो दुकानदार हैं उनको बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो बड़ी चेन सिस्टम है उसमें कहां तक मुकाबला करने की ताकत दे रहा है ये?
ONDC इज एन इनिशिएटिव विच एम्स टू प्रमोट ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो इसी से इसका जो दायरा है वो एक समझ लो कि डिफाइन हो जाता है कि ONDC कहां तक अपनी जो पहुंच है रखता है। और जैसे आपने सही बताया कि जो छोटे शहर हैं या फिर मझोले शहर हैं या फिर इवन के जो ब्लॉक लेवल पे एक गांव है, जो उनको भी ONDC का सपोर्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, मैं ये आसान भाषा में कहूंगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें बायर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेलर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो भी ब्रॉडर वे में जो भी सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुल मिला के जो इसका सपोर्ट है वो MSMEs को, जिसमें मेजरली जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और मैं समझता हूं कि ये मोनोपोली पावर्स को भी चैलेंज करता है, जिससे कि मार्केट में कंपटीशन रहता है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो काफी तादाद में इसके ऊपर आ जाते हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना और एक मोनोपोलिस्टिक पावर्स को डिमोरलाइज करना और जो डिजिटल प्रोसेसर्स है उनको प्रमोट करना, और जो छोटे मझोले बिजनेसेस हैं या फिर जो छोटे मझोले जो शहर या गांव या कस्बे हैं वहां तक इसकी आउटरीच को इंक्रीज करना, तो ये इसका एक माध्यम है। तो टोटली इट इज प्रोवाइडिंग अ स्प्रेड ऑफ मोर देन 616 प्लस सिटीज, जो कि पूरे ज्योग्राफिकल जो स्प्रेड है ONDC का वो हो चुका है। तो कुल मिला के मैं बताना चाहता हूँ कि ONDC इज अगेन अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी प्रोसेस विच इज सपोर्टिंग द ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस, उनका साइज इग्नोरिंग द साइज कुछ भी हो, मतलब उनको ONDC का सपोर्ट है। और जो माइक्रो यूनिट्स हैं, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जो मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, उनको खास करके ONDC ने काफी मात्रा में सपोर्ट किया है।
शुभ जी, अगर थोड़ी चर्चा आइस गेट जैसे प्लेटफॉर्म की करें, आइस गेट, इको 2.0 और ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल साधनों ने भारत के निर्यातकों और खासकर MSMEs के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आपके हिसाब से कितना आसान बनाया है, और इससे आने वाले समय में आप कितनी प्रगति और होने की उम्मीद कर रहे हैं?
ये सारी चीजें जो हम अभी जिक्र कर रहे थे, आइस गेट की आप बात कर रहे हैं, साथ में इको 2.0, इन सभी चीजें एक एक करके वही स्टेप्स हैं जो एक के ऊपर दूसरे के ऊपर बिल्ड करते हैं। जैसे सर्टिफिकेशन प्रोसेस की हमने जैसे बात की है कि सर्टिफिकेशन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ज़रा जरूरी रहता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके गुणवत्ता, उनकी जांच सही तरीके से और जल्दी हो गया है। ये सारी चीजें हमारे लिए ठीक, जैसे हम दूसरे चीजें जैसे हम कहते हैं इसके साथ में जैसे E-way बिल, उनके प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए नॉर्थ इंडिया जैसे ज्यादातर जगह है जहाँ पे SME कंपनियों का जाल बिछड़ा हुआ है, वहां से मुंबई आगे दूर ले जाने के लिए, गुजरात के पोर्ट में ले जाने के लिए उनके लिए ये फास्टर लॉजिस्टिक्स वाला सिस्टम हो गया है। इन सबका बेसिक मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि ये एक एक करके सारे प्रोसेसेस को जहां तक हो सकता है सारे प्रोसेसेस को हमने ऑटोमेटेड डिजिटल कर दिया है। आप देखेंगे इसके वजह से एक आंकड़ा आया है वर्ल्ड बैंक का कि इंडियन पोर्ट्स में जो डिलीवरी टाइम है वो काफी हद तक दुनिया में प्रतिस्पर्धा के रूप में काफी ज्यादा बेहतर हो गया है, एंड इट्स गिविंग ए कंपटीशन टू दूसरे कंट्रीज। और वो पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम प्रोसेस में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। ये वो रिफॉर्म्स हैं जो रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं कि कोई जैसे फैक्ट्री बनाना या कोई नया अनाउंसमेंट से ज्यादा, ये सारी वो चीजें हैं जिसको हम कहते हैं पेन पॉइंट्स बिजनेस के लिए। उन पेन पॉइंट्स को रिलीव किया जा रहा है, उन पेन पॉइंट्स को ईज किया जा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बिजनेस इज एबल टू मूव फास्टर। तो ये सारे कड़ी में जुड़े हुए हैं, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप अगर इन सारे प्रोसेसेस को अगर देखें जिसमें हम बातें किए हैं, जैसे ट्रेड्स को या ई वे बिल, ईटीओ, एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सिस्टम्स को, या इसके पहले जो आप बात कर रहे थे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ये सारे प्रोसेसेस एक से कनेक्टेड होने की वजह से इनका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, जो पहले हमें जिसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था, कि वही चीजों का अभी मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, कि कहीं पे एक्सपोर्ट का क्वालिटी भी बढ़ रहा है, जिसने मेड इन इंडिया गुड्स का स्टैंडर्ड्स काफी इंप्रूव कर दिया है, और साथ में एक्सपोर्टर्स को रियलाइजेशन यानी कि किस तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगा वो भी जल्दी हो गया है। पेमेंट गेटवेज हैव बिकम इजियर नहीं, बहुत ज्यादा स्मूद कर दिया गया है, विच इज एन इंश्योरिंग कि कोई फ्रिक्शनलेस, यानी कि पेमेंट बाहर से मिलने से लेकर अपने बिजनेस में आने तक देर इज हार्डली एनी रिस्ट्रिक्शंस। जिसलिए आप देखेंगे कि इंडिया से जब बिजनेस करते हैं बहुत सारे लोग, या इंडिया से नॉर्मली किसी पेमेंट के लिए बाहर जाते हैं, तो काफी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि बाहर में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर वगैरह में भी बहुत सारी चीजें उनको देखना पड़ता है, जो इंडिया में जिन चीजों का स्मृति ही लोगों को खत्म हो गया है कि इस तरह के भी रिस्ट्रिक्शंस रहते थे। तो इसीलिए दीज आर समथिंग विच मेक्स अस वेरी वेरी प्राउड।
सतप्रकाश शर्मा जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, अंत में संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या डिजिटल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र भारत को वैश्विक विनिर्माण और व्यापार हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और अगले दशक में आप क्या संभावना देखते हैं?
देखिए, संभावनाएं बहुत ही स्ट्रांग हैं, और जिस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी ने हमें सपोर्ट किया है और जिसका कंट्रीब्यूशन अभी जीडीपी में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, जो डिजिटल प्रोसेसेस हैं, अनुमान के मुताबिक लगभग कोई ये जीडीपी का 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज लार्जर देन शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि हमारा जो गति है, जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारी प्रोसेसेस हैं, और खास करके जो हमारा कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी वेरियस मिनिस्ट्रीज है, उसको और तेज गति देगा और हमारी ग्रोथ को और सुदृढ़ करेगा। और जो हमारा लक्ष्य है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं 2028 तक, और उससे पहले हम $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेंगे, उसके बाद हमारा लक्ष्य है कि हम अपना एक्सपोर्ट ट्राजेक्टरी जो $2 ट्रिलियन का हमने एस्टिमेट किया है 2030 तक, उस लक्ष्य को आगे अचीव कर पाए, और उसके बाद जो हमारा एक लॉन्ग टर्म जो गोल है, जो हम एक विकसित भारत बनना चाहते हैं 2047 तक, तो उसमें डिजिटल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी मेन इंग्रेडिएंट डिजिटल इकोनॉमी ही है। डिजिटल इकोनॉमी जितना जितना स्प्रेड होगा उतना ही ज्यादा हमारा एआई जो है वो हमारी मशीनरी में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे सर्विसेज में और ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा, और इंडिया एक बहुत तेज गति से बढ़ने वाला पूरे विश्व के जो इकोनॉमिक ऑर्डर को एक गति दे रहा है, जो लीड कर रहा है, तो और ज्यादा सुदृढ़ होगा।
सुमोह जी आपका, सतप्रकाश शर्मा जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है, भारत अब सिर्फ दुनिया का पीछा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। 15 मिनट में व्यापार का पंजीकरण, 691 बैंकों का एक डिजिटल मंच पर होना और करोड़ों नौकरियों के अवसर पैदा करना, ये सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं हैं, ये उस नए भारत की गूंज है जहां तकनीक ने आम आदमी और उसकी आकांक्षाओं के बीच की दूरियों को मिटा दिया है। चाहे वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में बैठा एक युवा उद्यमी हो जो उद्यम पोर्टल पर अपना भविष्य बुन रहा हो, या तमिलनाडु का एक निर्यातक जो ट्रेड कनेक्ट के जरिए वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। डिजिटल इंडिया अब हर भारतीय की ताकत है। MCA 21, UPI और गति शक्ति जैसे स्तंभों पर खड़ा ये ढांचा भारत को सुरक्षित, पारदर्शी और अत्यधिक लाभदायक निवेश डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर चुका है। सुधारों का ये सफर यही नहीं रुकता, संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते हमारे कदम अब भारत को 2047 के विकसित राष्ट्र की ओर आगे ले जा रहे हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आभार, नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे व्यवसाय सुगमता बढ़ाने की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोई भट्टाचार्य जी और SP शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
चर्चा का विषय है